الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، ہر نیکی رمضان کی طرح اپنے یہ اثرات رکھتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. رمضان المبارک کا فیضان ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے بہت سے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں اور برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ساری ڈھیروں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت ساری برائیوں کو کھا جاتی ہیں. رمضان المبارک اگر آدمی پورے روزے خلوص نیت کے ساتھ رکھے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت سی ہماری پہلے کی ہوئی برائیوں کو کھا جاتا ہے. رمضان کی اس برکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم منکرات سے بچ کر رہیں. تو جو سبق ہم اخلاق کا پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اگلا چیز جس سے منع کیا ہے وہ منکرات ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. منکر کا لفظ قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک یہ معروف کا الٹ ہے اور دوسرے یہ عدل کا الٹ ہے. عدل کا الٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حق مارنے لگیں، دوسروں کے حق کھا جائیں، ان کے پورے حقوق ادا نہ کریں، معاملات میرٹ پر نہ ہوں. یہ معاملہ منکر کا ہے. اور اگر منکر کو ہم عدل معروف کا الٹ لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سوسائٹی میں جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں، جو چیزیں پسندیدہ ہیں سوسائٹی کے اندر، جو چلن اچھے ہیں، جو شریعت کے مطابق ہیں، جو اخلاقیات کے مطابق ہیں، ان کے خلاف چلا جائے. تو منکر اپنے اصل میں دونوں پہلوؤں کو بیان کرتا ہے، یعنی حقوق تلفی کو بیان کرتا ہے اور اچھے چلن کو چھوڑنے کو بیان کرتا ہے. تو قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سے منکرات کا خاتمہ کریں. منکرات کا خاتمہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اسم اور عدوان نہ کریں. اسم کے معنی یہ ہیں کہ ہم جو حق میرے باپ کا ہے میں اس کو نہ دوں، جو حق میرے خدا کا ہے میں اس کو نہ دوں، جو حق جس شخص کا بنتا ہے اس کو نہ دوں، کسی نے میرے پاس امانت رکھی ہے وہ کھا جاؤں، کسی کے عزت کرنے کا مقام تھا اس کی عزت نہ کروں، کسی کا احترام کرنے کا مقام تھا تو اس کو احترام نہ دوں، یہ منکرات ہوں گی. اسی طرح منکرات یہ ہیں کہ سوسائٹی کے جو اچھے دستور ہیں، اچھے چلن ہیں، جیسے مہمان نوازی ہے، جیسے ملنے اور جلنے کے آداب ہیں، ان کا آدمی لحاظ نہ کرے، وہ بدتمیزی اور بدسلیقی کی پر اتر آئے تو یہ بھی معروف کے خلاف ہوگا. تو معروف اور عدل، ان دونوں کو اگر الٹ دیں تو اس کو منکر اور اسم کہا جائے گا. تو اگلی جو قرآن مجید نے چیز جس سے ہمیں روکا ہے وہ یہی منکر ہے، کہ ہم اپنی زندگی میں منکرات کا خاتمہ کریں. رمضان کئی پہلوؤں سے جس طرح ہماری مدد کرتا ہے، اسی طرح منکرات پہ قابو پانے میں بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز، نیکی کا کوئی بھی عمل، کوئی جادو کے طریقے کا عمل نہیں ہے کہ ادھر آپ منتر پڑھیں اور ادھر ہو جائے. یہ ہر نیکی، خواہ وہ کلمہ طیبہ کہنا ہو یا کوئی عمل کرنا ہو، وہ اس وقت اثر انداز ہوگا. اس کے فوائد تب حاصل ہوں گے جب ہم اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے، اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا. اسی طرح دعاؤں کا معاملہ ہے کہ دعائیں ایک منتر کی طرح اثر نہیں کرتی، وہ ہماری خلوص نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس میں مانگنے والے کی کیفیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو اس موقع پر یہ چیز دی جائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ نہیں فائدہ مند ہوگی. اسی طرح اگر اس کو یہ چیز دے دی جائے تو کیا اس کے گھر والوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو یہ چیز دے دی جائے تو اس کے محلے کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی. اس اصول پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتے ہیں. تو دعاؤں کے بارے میں بھی عام طور سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ادھر میں منتر کی طرح پڑھوں ادھر کام ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق چیزوں کو کرتے ہیں، اور ان کے اصول لگے بندے ہیں، واضح ہیں، وہ کبھی ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے. وہ آدمی کا ظرف بھی دیکھتے ہیں، جس علاقے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کا بھی ظرف دیکھتے ہیں، اس طرح سے چیزیں اس کو عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کا وہ اصول ہے جس کو اس نے بہت واضح بیان نہیں کیا ہے، لیکن اشارات سے ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دینے کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ اعلیٰ علم کرتے ہیں और अपने हिकमत के मुताबिक करते हैं। ऐसा ही मामला नेकियों के अमल का है। अगर आप नेकी इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपके ऊपर अच्छे असरात डाले, तो वो नहीं डालेगी। आप नेकी इस तरह से कर रहे हैं कि बस ये जिम्मेदारी है, मजबूरी है, अब क्या करें, इसको कर लें, जान छोड़े, निकल जाएं किसी तरह से, अगर आप नेकी को इस तरह से लेंगे तो अपने असरात नहीं डालेगी। इसकी मिसाल कुरान मजीद ये कहता है कि इन सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज जो है वो बहुत सी फहशा से और मुनकर से आपको रोकती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम नमाजें पढ़ते हैं लेकिन मुनकरात भी करते हैं, फहशा में पड़े रहते हैं। बहुत सारे नमाजी ऐसे होंगे कि जिनका रवैया नहायत ही बुरा होता है, जिनका तकब्बुर ही देखा नहीं जा सकता, तो ऐसे लोग नमाजी होते हैं। तो वजह क्या है? वजह यह है कि हमने नमाज को बस एक दो टकरों के सिवा और कुछ हैसियत नहीं दे रखी। ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, जी अजान हुई चले गए, फारिग होके आ गए, तो नमाज अपने असरात नहीं छोड़ती। नमाज खुदा की याद दहानी है, वो मुनकरात से रोकने का जरिया बनती है। कुरान का ये वाज़े ऐलान है, कोई हम इशारे कनाए की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि इन्न सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज फहशा से भी रोकती है और मुनकर से भी रोकती है। और फहशा और मुनकर के बारे में हम ये अभी जान चुके हैं कि ये वो बुनियादी दो गुनाह हैं जिनसे अल्लाह ताला ने नेकियों का हुक्म देने के बाद रोका है। यानी फहशा भी बुनियादी बुराई है और मुनकर भी बुराई बुनियादी बुराई है। इससे बहुत सारी बुराइयां पैदा होती हैं। अदल के खिलाफ जितने इकदाम करेंगे, अमानतें खाने का, धोखा देने का, फरेब देने का, नुकसान पहुंचाने का, गाली देने का, तौहीन करने का, ये जितने मामलात करेंगे ये मुनकर के अंदर आ जाएंगे। और जितने दस्तूर हैं सोसाइटी के, अच्छे अकदार हैं, अखलाकी अकदार और दूसरी जो समाजी अकदार होती हैं, उनके खिलाफ भी अगर हम चलेंगे तो ये भी मुनकर होगा। तो कुरान मजीद ये कहता है कि नमाज रोकती है, रोजा भी रोकता है, क्योंकि रोजा तो है ही तकवा पैदा करने की चीज। तो नमाज रोकती है लेकिन हमारी नमाज नहीं रोक पाती। उसकी वजह यह है कि हमारी नमाज में बहुत सारे नकायज हैं। एक तो नमाज ये काम करती थी कि कुरान मजीद की चूंकि उसमें तिलावत होती है तो वो याद दहानी करती है। याद दहानी करेगी तो हमें बहुत सारी तालीमात कुरान की रोजाना समझ में आएंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोगों की जुबान उर्दू है, हम अरबी को समझ नहीं सकते। जब अरबी को समझ नहीं सकते तो उसका नुकसान ये होता है कि नमाज अपना तस्कीर वाला ये अमल कि वो हमें याद दहानी करे, हमें झंझोड़े, हमें बेदार करे, ये काम करना नमाज छोड़ देती है। नमाज का दूसरा फायदा यह था कि वो जब हम खुदा के आगे सजदा रेज होते हैं, उसके आगे रुकू व सुजूद करते हैं, तो हमारे अंदर इनकसारी पैदा होनी चाहिए। लेकिन जब हमने रुकू इस नीयत से नहीं किया, जब सजदा इस नीयत से नहीं किया, हम शुक्र करने थोड़ा ही जाते हैं, हम तो ड्यूटी देने जाते हैं। तो जब ड्यूटी देने जाते हैं तो फिर नमाज के ये आमाल भी हमारे ऊपर वो असरात नहीं करते जो हमारे अंदर नेकी और तकवे को पैदा करें। जब नमाज ये काम नहीं करती तो हम नमाजी होने के बावजूद, जब रोजा काम ये नहीं करता तो रोजादार होने के बावजूद हम मुनकरात में पड़े रहते हैं। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि जितनी भी बुराइयां हैं, ख्वाह वो मुनकर की नौयत की हों, ख्वाह वो फहशा की नौयत की हों, वो उस वक्त तक हमारे अंदर रहेंगी जब हम खुद उनको कुरेद कुरेद कर अपने दिल से नहीं निकालना चाहते, अपनी आदत से उनको नहीं निकालना चाहते। हम ये बात देते हैं जी मेरी आदत बन गई, मैं अब इतने अरसे से ऐसा ही करता आ रहा हूं, मैंने अपने माँ बाप को ऐसे देखा है, मैंने बड़ों को ऐसे देखा है, मैंने भाइयों को ऐसे देखा, मैं कैसे इतनी जल्दी छोड़ दूं। आज आप फैसला कर लें। किसी भी बुराई को खत्म करने का बुनियादी असूल यह है कि जिस तरह कुरान भी कहता है कि तौबा कर लो। तौबा का मतलब होता है कि आज से मैं ये बुराई छोड़ रहा हूं। तो आपने ये तौबा कर लें, अगर आज से ये फैसला कर लें पूरी कुव्वत इरादी के साथ कि आज के बाद मैं ये बुराई नहीं करूंगा, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये ख्याल करें कि आज मैं थोड़ी सी छोड़ देता हूं, कल और थोड़ी सी छोड़ दूंगा और आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म कर दूंगा, ऐसा बुराइयों के बारे में नहीं होता। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रमजान क्या कोई भी चीज आपके काम नहीं आ सकती। हद ये है कि मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल आते हैं दुनिया में और अबू जहल और अबू लहब जैसे लोग उनकी पूरी बात सुनते हैं, उनका कलाम पूरा सुनते हैं, और ऐसा कलाम कि जिसको छुप छुप कर सुनने के लिए वो तहज्जुद के वक्त नबी सल्लम के पास सुनने के लिए आ जाते थे, और फजर के वक्त जब आप उसे बैतुल्लाह में पढ़ते थे, उसके इतने मुअस्सर होने के बावजूद, उसकी तासीर हासिल करने के बावजूद वो अपनी बुराइयों को क्यों नहीं छोड़ सके? इसलिए कि उनके अंदर वो जज्बा नहीं था कि जिसके बुनियाद पर वो फैसला करते कि आज से हम हक बात को मान लेते हैं। ये जो चीज है कि हम आज फैसला करेंगे, ये रमजान का महीना हमें ये मौका एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरे 30 दिन के लिए हमें फराहम करता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अगर तकवे को मजबूत कर लें, तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाए। मसाल के तौर पर पहले 10 रोजों में हमने अपने ईमान को ताजा किया, अपने अंदर तकवे की ताजगी हुई, और हम 10वें रोजे ही फैसला कर लें कि आज के बाद से मैंने अपनी जिंदगी से ये बुराइयां धो डालनी है, इनको खत्म कर देना है, तो ये मुनकरात आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी मसीहा का इंतजार करते रहें, किसी खत्म करने वाले का इंतजार करते रहें, और उस दिन का इंतजार करते रहें कि अभी तो जवान हूं, अभी ये करता रहूं, फिर बाद में छोड़ दूंगा, 40 साल के बाद छोड़ दूंगा, तो नहीं मालूम कि आप छोड़ सकेंगे या नहीं छोड़ सकेंगे, और नहीं मालूम कि आप उस हद तक जिंदा रहेंगे कि नहीं जिंदा रहेंगे। इसलिए आज ही ये फैसला कीजिए कि आज के बाद से हमने ये मुनकरात को छोड़ देना है। यहां जहनों में एक सवाल पैदा हो सकता है कि ये मुनकरात बड़ी लजीज हैं, इनके अंदर राहत मिलती है, इनके अंदर लज्जत मिलती है, इनके अंदर अय्याशी और उसके कई तौर अतवार के चीजें हैं जो हमें हासिल होती हैं, तो क्या हम इनको छोड़ दें? ये एक बड़ी कुर्बानी है, ये एक बड़ा इशार चाहती है। तो कुरान मजीद ये कहता है कि इन लज्जतों के मुकाबले में तुम्हें जो लज्जतें मिलने वाली हैं वो खैरुम व अबका है, बेहतरीन है और हमेशा रहने वाली है। ये आर्जी हैं। आप किसी भी चीज में पड़ जाइए, किसी भी मुनकर के जो भी आपको फवायद मिलते हैं वो सब के सब आर्जी और वक्ती हैं और बेमानी हैं, एक लम्हे के लिए है, वह अबका नहीं है, खैर नहीं है, यानी वो हमेशा के लिए नहीं है और बिल्कुल बेमानी बेहकीकत है उन चीजों के मुकाबले में, वो जन्नत में मिलने वाली है। तो मुनकरात का ये पहलू आपको कमजोर ना करे, क्योंकि ये शैतान है जो चीजों को मुजयन करता है। शैतान को, जैसे हमने पिछली दफा ये जाना कि शैतान क्या काम करता है, कि वो फहशा के रास्ते से हमें गुमराह करता है, और यहां आज हम ये समझेंगे कि शैतान क्या करता है। शैतान ये करता है कि वो हमारे इन चीजों को जिनको कुरान मुनकर कह रहा है वो उनको संवार संवार के हमारे सामने पेश करता है। देखो ये कितनी अच्छी है, देखो ये चीज कितनी खूबसूरत है, देखो इससे तुम्हें ये फायदा मिलेगा, देखो इसका तुम्हें ये सम्राट मिलेंगे। इस तरह से शैतान उसको मुजयन करता चला जाता है, और हमारे दिल में ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत बड़ी चीज से महरूम हो जाएंगे, हालांकि वो चीज क्या है, वो मुनकर है, और मुनकर के बारे में वो हमारे दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देगा, उसकी लज्जत और उसकी राहत को ऐसे जांगुजी कर देगा कि हम ये ख्याल कर रहे होंगे कि ये गया तो सब कुछ ही गया, इससे छिन गए तो पता नहीं क्या हमसे छिन जाएगा। ये शैतान का वो हरबा है जो वो मुनकरात के बारे में हमारे दिल में पैदा करता है। तो कोशिश ये करें कि मुनकरात के बारे में शैतान की ये तज़यीन, यानी बना संवार कर चीजों को पेश करना और हमारे दिल में उसको इस तरह से रासख करना कि ये निहायत ही अजीज चीज है, ये निहायत ही कीमती चीज है, इससे बचने का सामान रमजान आपको फराहम कर सकता है। तो मुनकरात से बचने के लिए इन चीजों पर भी गौर करें कि इनकी हैसियत क्या है, क्या वैल्यू है, ये कितना आपको राहत फराहम करती हैं, कितनी लज्जत दे जाती हैं। बहुत वक्ती सी चीज है, एक लम्हे के लिए आपके ऊपर उबाल आता है और बस निकल जाता है, जबकि अल्लाह ने आपके लिए जो वादा कर रखा है वो इससे बहुत बेहतर है, बहुत शानदार है, उसकी लज्जतें कभी खत्म नहीं होंगी, वो गैर ममनून नेमते हैं, यानी मुनकते ना होने वाली, एक लम्हा भी आप पे ऐसा नहीं आएगा कि ये नेमते आपसे मुनकते हो जाएं। तो इन चीजों को समझिए, और दुनिया में जो मिलने वाली चीजें हैं, हदीसों में आता है कि इस दुनिया की सारी नेमतों की हैसियत ऐसी है जैसे आप सुई लेकर समंदर में डालें और निकालें, तो समंदर के मुकाबले में जितना पानी इसको लग गया है वो जन्नत और जमीन के ऊपर मिलने वाली नेमतों का मुकाबला है। यानी आपने सारी जिंदगी में जो कुछ हासिल किया वो ऐसे ही जैसे समंदर से सुई डाली और उसमें पानी लग गया, ये पानी जो आपको हासिल हुआ है, ये समंदर जो जन्नत में मिलने वाली नेमतें हैं उसके मुकाबले में आप इसकी कीमत जान सकते हैं कि कितनी हकीर है। लेकिन इंसान को शैतान अपने हरबों से इस तरह से काबू में कर लेता है कि वो इस सुई के बराबर पानी के चंद बूंदों के लिए अपनी जन्नत को, अपनी आखिरी जिंदगी को, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, उसको कुर्बान कर देता है। ये शैतान की वो चाल है जिससे निकलने के लिए अल्लाह ताला ने रमजान के मुबारक महीने में रोजे फर्ज किए हैं, ताकि हमारे अंदर वो कुव्वत पैदा हो, वो तकवा पैदा हो, कि हम शैतान को हर हर कदम पे शिकस्त दे सकें। वाह खुदावाना अलहमदुल्ला रबीन।